बतूल उस दिन सुबह सवेरे रोज की तरह हवेली में दाखिल हुई थी, जब सहन में चलता हुआ मुराद उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। तुम मोतिया की सहेली हो, उसने बतूल के सलाम के जवाब में कहा था। बतूल की समझ में नहीं आया कि वो उसे क्या जवाब दे। मुराद ने जैसे उसकी मुश्किल आसान कर दी थी। तुम्हें देखा था मैंने मोतिया के साथ रेलवे स्टेशन पर और फिर टांगे में, उसने जैसे बतूल के लिए अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी। जी, बतूल ने मुख्तसर जवाब दिया। वो मुराद को सर उठाकर नहीं देख सकी। उससे मुराद की आंख में आंख डालकर देखा ही नहीं जाता था। यह काम सिर्फ मोतिया को आता था। मुझे मोतिया से मिलना है, उसे मेरा पैगाम पहुंचा दो। बतूल ने इस बार हड़बड़ाकर उसे देखा था। वो बेतासुर चेहरे के साथ उस पर नजरें जमाए खड़ा था। मैं उसे आपका पैगाम दे दूंगी, लेकिन पता नहीं वो आपसे मिले ना मिले, उसने मुराद से कहा और मुराद के होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट आई। तुम बस उसे पैगाम देना और वक्त बताना कि मैं कब कुएं पर आऊं, वो उसे कहकर बड़े यकीन से वहां से चला गया। यूं जैसे उसे पता था कि मोतिया उसका पैगाम सुनते ही दौड़ी चली आती। बतूल दूर जाते मुराद को देखती रही, उसके ऊंचे लंबे सरापे को, लंबे लंबे डग भरते उसके वजूद को। हर अच्छी चीज की तरह वो भी मोतिया का था। बतूल के अंदर कुछ सुलगा था। सईद एक लम्हे के लिए भी उसे याद नहीं आया था और मुराद अब उसे भूल नहीं रहा था। कहां मिलना है उसने, मुराद ने ठीक कहा था। मोतिया ने कोई सवाल जवाब किए ही नहीं थे बतूल से, उसने बस जगह और वक्त पूछा था। चौधरी मुराद ने कहा वक्त और जगह तुम तय करोगी, बतूल ने उसे बताया। मोतिया का चेहरा चमका। तो बस फिर कुएं पर रात के वक्त, मोतिया ने कहा था। तू क्या कहकर आएगी, बतूल ने पूछा था। सच बोलकर आऊंगी, अम्मा से कहूंगी मुराद पाने जा रही हूं। मोतिया ने छोटी उंगली की पोर के कोने से आंख में काजल डालकर जैसे लकीर खींची थी और आईने में से बतूल को देखकर मुस्कुराई थी। वो तो पहले से ही तेरा है, तूने क्या पाना है उसे, बतूल ने अजीब हसरत से सोचा था। उसे कहो दिन को आए, रात को घर से निकलेगी तो बदनामी मोल लेगी और उसकी इज्जत मुझे अपनी इज्जत से भी ज्यादा प्यारी है। बतूल ने मुराद को मोतिया का पैगाम पहुंचाया था और उसने जवाबन उससे कहा था। बतूल उस पर मर मिटी थी। ये कैसा मर्द था जो रात के अंधेरे में मिलना नहीं चाहता था, दिन के उजाले में अपनी महबूबा से मुलाकात चाहता था, जिसे महबूबा की नेक नामी की परवाह अपनी बदनामी से ज्यादा थी और वो सईद से हमेशा रात के अंधेरों में मिलती थी। वो बुलाता ही रात को था। उसे सईद पर एक बार फिर गुस्सा आया, उसकी बुजदली पर और उसकी बेगैरती पर, लेकिन अपनी बेबसी और मजबूरी पर उससे भी ज्यादा। वो मोतिया होती तो उसे मुराद मिलता, वो बदबख्त बतूल थी इसलिए उसे सईद मिला था। बतूल ने जैसे खुद ही कोसा था, ये जानने के बावजूद कि इन कोसनों से भी सईद ने सईद ही रहना था, उसने मुराद नहीं बन जाना था। देखा बतूल, नहीं मिलता वो मुझसे रात में, मोतिया बतूल की जुबान से मुराद का जवाब सुनकर हंसी थी और हंसती ही चली गई थी। मुझे पता था इनकार ही आएगा उसका, वो मुझसे रात को मिलने पर तैयार हो जाता तो मोतिया के दिल से उतर जाता। बतूल उसका भी चेहरा ही देखती रह गई थी। वो इश्क की कौन सी दास्तान रकम करने जा रहे थे, जिनके इम्तिहानों और परखों में ऐसे इम्तिहान होते थे और महबूब की सदाकत को यूं परखा जाना था। या फिर बतूल ये सोचती कि वो इश्क की कौन सी मेराज पर थे कि एक दूसरे से मिलने के लिए बेकरार होते हुए भी दिन और रात की हदें फलांगने को तैयार नहीं थे। ऐसा कभी बतूल और सईद के पैर में तो ना हुआ था। वो पता नहीं बार बार क्यों खुद को और सईद को उन दोनों के बराबर लाकर खड़ा कर देती थी। तो बस फिर ठीक है, दिन दिहाड़े मिलूंगी उससे वहीं कुएं पर, और तुम भी साथ होगी मेरे बतूल, मोतिया ने यकदम ऐलान करने वाले अंदाज में उससे कहा था। मुझे क्यों साथ रखती है, मेरे सामने तो बात भी नहीं कर सकोगे तुम दोनों, बतूल ने फौरन ही जैसे हाथ खड़े कर दिए थे। मोतिया के होंठों पर अजीब पुरसरार सी मुस्कुराहट आई थी, यूं जैसे उसे उसकी बात बेवकूफाना लगी हो। वो कुएं पर ही मिले थे, पर कुएं के पिछली तरफ आम के बाग में, जहां मोतिया उसके इंतजार में टहलती हुई चली गई थी। मुराद घोड़े पर आया था, कच्चे रास्ते पर घोड़ा दौड़ाते गर्द उड़ाते, और उसने मोतिया को बहुत दूर से देख लिया था और खुद मोतिया ने भी। वो अजीब सहर ज़दा सी उसे दूर से आता देखती रही थी। वो घोड़ा यूं दौड़ा रहा था जैसे वो कच्चा रास्ता पक्की पगडंडी हो। मोतिया से कुछ दूर ही उसने घोड़े की रफ्तार को आहिस्ता करना शुरू कर दिया था। घोड़ा सरपट भागते हुए हल्की दौले की चाल पर आ गया था और फिर आमों के बाग की हदबंदी के साथ साथ चलने लगा था। वो भी जैसे अपने सवार की तरह मोतिया पर ही नजरें जमाए हुए था। मोतिया के करीब आने पर मुराद ने बाघ खींचकर घोड़े को रोका, फिर बाघ को गिराह लगाकर छोड़ते हुए वो घोड़े से नीचे कूदा था और फिर मोतिया के सामने आकर खड़ा हो गया था। वो दो आमों के दरख्तों के बीचों बीच खड़ी थी। तो तुम मुझे अपने ख्वाबों में देख रही हो, और कितने सालों से? मुराद ने ना सलाम किया न कोई तमहीद बांधी थी। वो उस लड़की से साफ साफ बात करना चाहता था, इधर उधर की बातें नहीं। 5 साल से, मोतिया ने उस पर नजरें जमाए हुए कहा था और फिर हाथ बढ़ा दिया था। मुराद ने उसके हाथ में पकड़ा मोतिया का हार देखा था जो उसके हाथ का पिरोया हुआ था। मुराद ने उसके हाथ से वो हार नहीं लिया था, उसने उस हार को उसी कलाई में बहुत नरमी से लपेटना शुरू कर दिया था जिसमें मोतिया ने वो थामा हुआ था। सुनो, तुमसे लंबी बात करने नहीं आया, ना झूठे कॉल इकरार करने आया हूं। तुम मुराद के दिल में तीर की तरह खुब गई हो, निकालने से भी नहीं निकल रही, और निकालना चाहता भी नहीं तुम्हें। तो बस तुमसे यह कहने आया हूं कि तुम मेरी हो, अपने माँ बाप भेजूंगा तुम्हें अपनी जिंदगी का साथी बनाने के लिए, और देर नहीं करूंगा, बस तुम मेरी रहना, किसी और के हाथ में यह हाथ न देना, वरना मैं तुम्हें तो कुछ नहीं कहूंगा, उसे जान से मार दूंगा। वो अजीब कौल करार था जिस पर मोतिया हंसी थी, और उसने मुराद से कहा था, तुम्हारे अलावा तो मेरे ख्वाबों में भी कोई नहीं आता मुराद, अपना हाथ कैसे किसी को थमा सकती हूं। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले खड़े थे और चुप थे और साकित थे और सांस भी नहीं ले रहे थे, और इस सब की जरूरत भी क्या थी, फिर तो जिंदा रहने के लिए कहां जाना था, दोनों तो एक दूसरे पर मर गए थे। उसके नयन गजाली दिलबर, उसके गाल गुलाबी, उसके रूप पे सावन बरसे, बह जाए मरमर के, उसका हुस्न कहानी जैसा, कागज कितने भर दे, उसकी मुश्क बहारों जैसी, सहरा जन्नत कर दे, उसके बोल है मीठा झरना, उसकी चुप में छाओ, वो हुस्न परी, वो रूपमती, वो मेरे जल की नाव। वो उसका हाथ पकड़े उसकी आंखों में आंखें डाले, उसके लिए वो गुनगुना रहा था जो उसने कभी किसी लड़की के लिए नहीं गुनगुनाया था, और वो उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। उसने अपने हुस्न की तारीफें पता नहीं किस किस से सुनी थी, और जो उस दिन उस लम्हे उसने मुराद से सुना था वो बस अमर हो गया था। वो दोनों वैसे ही खड़े एक दूसरे को देखते जा रहे थे, और पता नहीं कब तक एक दूसरे को देखते ही चले जाते अगर आसमान पर बादल उनके साथ शरारत करना सोचता। वो बारिश की बूंदें थी जिन्होंने उन पर टपकना शुरू किया था और उनका इन्हमाक तोड़ने में नाकाम रही थी, और फिर वो मूसलाधार बारिश थी जो उन दोनों पर मोहब्बत की तरह बरसने के लिए उतरी थी, और ये बतूल थी जो एक दरख्त की ओट से भीगते और भागते हुए मोतिया की तरफ आई थी, और उसने मोतिया का हाथ पकड़कर खींचते हुए जैसे उसे होश में ले आने की कोशिश की थी।
बारिश हो रही है मोतिया, भीग रही हो तुम, बस चलो अब चलते हैं, गांव के लोग आ रहे हैं अभी इसी तरफ।
वो बरसती बारिश में उसे खींचते हुए वहां से ले गई थी, पर मुराद वहीं खड़ा रह गया था। उसने कच्ची जमीन में उसकी चप्पल के निशान देखे थे जो भीगी जमीन पर यूं नक्श थे जैसे मुराद के दिल पर मोतिया का चेहरा। वो बरसती बारिश में बतूल के साथ दूर जाते हुए भी मुड़ मुड़ कर उसको देख रही थी, और वो मुड़ा ही नहीं था। वो तब तक वहीं खड़ा उसे जाता देखता रहा जब तक वो नजर आती रही थी, और फिर जब वो नजर आना बंद हो गई तो मुराद को पहली दफा उस बरसती बारिश का एहसास हुआ जिसमें अब उसके कपड़े जैसे निचड़ रहे थे। उसे अब वहां से जाना था, पर समझ नहीं आ रही थी कि अब वो जाए तो कहां जाए। दिल जहां जाना चाहता था वहां का रास्ता भी उसे बताना था, और दिमाग, वो अब कुछ कह ही नहीं रहा था। उसने दिल के सामने घुटने टेक दिए थे। वो मुराद का दिल था जो मोतिया के सामने हारा था उसने, तो उसका दिमाग कैसे गलत कह देता उसे, क्या तावील देता।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने फलों के इतने टोकरे मेरे घर मोतिया के लिए भेज दिए। हम तीनों ने खूब राज राज के फल खाया है और आस पड़ोस वालों को भी बांटा है, फिर भी ऐसी बरकत पड़ी है उन फलों में कि खत्म ही नहीं हो रहे। गामू ने अगले दिन चौधरी शुजा के घर जाकर उसका शुक्रिया अदा किया था, और चौधरी शुजा कुछ उलझ गया था।
मैंने तो नहीं फल भेजा, चौधरायन ने भेजा होगा, तुमने और तुम्हारी बेटी ने काम भी तो ऐसा बड़ा किया है गामू,
चौधरी शुजा ने उससे कहा था, और फिर साथ ही जैसे एक बार फिर उसके मशकूर हुए थे। गामू सर झुका कर रह गया था।
उस दिन घर आकर खुशगवार हैरत में चौधरी शुजा ताजवर से उन फलों के बारे में पूछे बगैर नहीं रह सका। वो गामू और अल्लाह वसाई के लिए ताजवर की नापसंदीदगी से वाकिफ था और उसके लिए ये हैरानी की बात थी कि ताजवर उनके घर फल भेजती और वो भी टोकरों के टोकरे। मैं क्यों भेजूंगी फलों के टोकरे गामू के घर? ताजवर भी चौधरी शुजा के इस्तफसार पर हैरान हुई थी। तो हो सकता है तुम्हारे वालिद साहब ने भिजवाए हों? शुजा को उसके जवाब ने हैरान किया था और फिर उसे पीर इब्राहिम का ख्याल आया था। अब्बा जान ने कुछ भेजना होता तो मुझे भेजते और साथ पैगाम दे देते कि ये उनके चाहने वालों को दे दूं। ये थोड़ी करते कि मेरे गांव के किसी भी शख्स को मुझे बताए बगैर फल भेजना शुरू कर देते। ताजवर उलझी हुई थी, मगर उस उलझन में भी वो जैसे फल भेजने वाले को ढूंढने लगी हुई थी। और फिर जैसे एक धमाके के साथ उसके जहन की स्क्रीन पर मुराद का चेहरा चमका था। मुझे पता है किसने भेजा है फल, ताजवर बेख्तियार बड़बड़ाई थी। उसे मुराद पर शुबा नहीं था, यकीन था कि मोदिया को यह फल भेजने वाला वही हो सकता है। उसका दिल डूबा था। वो मुराद की मां से पहली चोरी थी और ताजवर जैसे बल खा कर रह गई थी। वो वहां से लपकती हुई हवेली के बावर्ची खाने में गई थी जहां शकुरा काम कर रही थी। शकुरा, सुबह थत्थी से कहना कि मोतिया को भेजे दाने साफ करने। उसने अंदर दाखिल होते ही बड़ी दुरुस्तगी से शकुरा से कहा, जो लस्सी बलोते हुए ताजवर के इस तरह वहां आने पर कुछ ठिठक कर रुकी थी। वो मोतिया को तो कभी नहीं भेजती थत्थी, आपको पता तो है। ताजवर ने उसकी बात बीच में ही काटी थी। सुबह मोतिया ही आएगी हर सूरत, कह देना थत्थी को, वरना दोबारा मुझे शक्ल न दिखाए वो, ताजवर ने दो टोक अंदाज में कहा था और फिर वहां से चली गई थी। और शकुरा की समझ में नहीं आया था कि ताजवर को बैठे बिठाए हुआ क्या था। अभी तो पूरा गांव गामू और उसकी बेटी की दिलेरी के लिए मदह सरा था जिसने चौधरी शुजा की नस्ल बचा दी थी। वो बड़बड़ाते हुए दोबारा लस्सी बलोने लगी थी। इतने साल के साथ के बाद भी उसे ताजवर कभी समझ नहीं आई थी, और ताजवर यूं आसानी से समझ आ जाती तो फिर तो कोई मसला ही ना रहता।